इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। शब्दार्थ इस प्रकार से है, क वा ऐसा कौन पुरुष है यह संसार में ते तुम्हारा श्री भगवान का अपराजित न पराजित हो सकने वाला अपराजित वारा माया माया के द्वारा अनवसित पदव्य जिसका पथ निर्दिष्ट न किया जा सके अनावृत मति जिसकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है विषय विष विषय तुल्य भौतिक सुख का रय पथ से होकर अनावृत खुला हुआ प्रकृति जिसका स्वभाव अनुपासित बिना उपासना किए महचरण परम भक्तों के चरण कमल। अनुवाद इस प्रकार से है, ये ईश्वर जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। दरअसल ऐसा कौन है जो विष तुल्य भौतिक सुख की तरंगों में न बहा हो। आपकी माया दुर्जय है, न तो इस माया के पथ की कोई देख सकता है न इसके कार्य प्रणाली को ही कोई बता सकता है। तात्पर्य, महाराज नाभी पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ करने पर तुले थे। हो सकता है कि उनका पुत्र भगवान के ही समान उत्तम हो, किंतु ऐसी इच्छा चाहे छोटी हो या बड़ी माया के प्रभाव से ही मन में आती है। भक्त कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता, इसलिए भक्ति को निष्काम अन्यभिलाषित शून्य कहा गया है। प्रत्येक प्राणी माया से प्रभावित है और सभी प्रकार का भौतिक कामनाओं में उलझा हुआ है। महाराज नाभी भी इसके अपवाद न थे। माया के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है कि बड़े बड़े भक्तों की सेवा की जाए, मत चरण सेवा। महान भक्तों के चरण कमल की उपासना किए बिना माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाहिचे केवा। ऐसा कौन है जो वैष्णव के चरण कमलों की सेवा किए बिना माया के चंगुल से बच सकता है। माया अपराजित है और उसका प्रभाव भी अपराजित है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.14 में हुई है। दैवीय गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी त्रिगुणमयी दैवी शक्ति अपराजय है। माया के इतने बड़े प्रभाव को भक्त ही लांग सकते हैं। यह महाराज नाभी का दोष न था कि उन्होंने पुत्र की इच्छा व्यक्त की। वे ऐसा पुत्र चाहते थे जो भगवान के ही सदृश सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर के भक्त की संगति से भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रह जाती। इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.54 में की गई है। साधुसंग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधुसंग सर्वसिद्धि है। तथा मध्य लीला 22.51 में, महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहे शय। यदि कोई माया के प्रभाव से बचना चाहता है और घर को लौटना अर्थात भगवान के धाम में जाने का इच्छुक है तो उसे साधु भक्त की संगति करनी चाहिए। सभी शास्त्रों का यही मत है, भक्त के रंच मात्र सत्संग से माया के चंगुल से छूटा जा सकता है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई किसी भी प्रकार से माया से नहीं बच सकता। निश्चित ही ईश्वर की प्रेमा भक्ति पाने के लिए शुद्ध भक्ति की संगति आवश्यक है। साधु संघ के बिना माया के चंगुल से छूटना कठिन है। श्रीमद् भागवत 7.5.32 में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैषा मतिस्वा वधूर क्रमांगिरम स्पृशत्य अनर्थपगो यदर्थ महिषाम पाद रजो भी केशम वधुभीष पाद रजो अभिषेकम निष्कंचनानाम न उर्णीत यावत। जब तक कोई सिर पर महान पुरुष साधु की धूलि को धारण नहीं करता तब तक वह ईश्वर का भक्त नहीं बन सकता। पाद रजो अभिषेकम, शुद्ध भक्त निष्किंचन होता है अर्थात उसे इस संसार के भोग की कोई इच्छा नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे भक्त के गुणों को प्राप्त करने के लिए उसकी शरण में जाए। शुद्ध भक्त माया के चंगुल से तथा उसके प्रभाव से सदैव मुक्त रहने वाला है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामीयं ददाति स्वपदाङ्कितं देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिस्वे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी उषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं सभी जहाँ कई बार भी उपस्थित हैं सभी भक्तों के चरण में याचना करता हूँ कि आप सब आशीर्वाद दें कि मैं कुछ भक्तों के प्रसन्नता के लिए कुछ बोल सकूं। तो आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत स्कंद पांचवा और अध्याय जो है वो तीसरा और श्लोक क्रमांक जो है 14। और इस अध्याय का शीर्षक है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। तो ये श्रृंखला जो है यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे जो जो अग्निर्ध है इनके पुत्र नाभि और नाभि की जो पत्नी है मेरु देवी ये जो है संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और कैसी संतान जो भगवान के समान हो। तो इससे पहले जो 13 श्लोक है उसके में वर्णन आता है जब नाभि राजा नाभि जो है वो पुरोहितों को बुलाते हैं यज्ञ के लिए और यज्ञ करने के बाद जो प्रवज्ञ यज्ञ नामक यज्ञ होता है वो जब वो करते हैं तब जो है भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ पर अवतरित होते हैं। तब जो बाकी पुरोहित हैं जो ब्राह्मण हैं वहाँ पर जो है भगवान का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। तो जो भगवान के जो गुणगान अलग अलग प्रकार का गुणगान जो है वहाँ पर करते हैं और आगे जो देखते हैं इसके पहले 13वां 12वां श्लोक जो है उसमें हम वो ऐसा बताते हैं कि हमें आशा रखनी चाहिए कि भगवान जो है हमारी सभी इच्छाएं जो पूर्ण करते हैं। तो ये आज हम देखेंगे तीन प्रकार का यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं तीन चीजों के बारे में। एक तो इच्छा, दूसरा है साधु संग और तीसरा है महत सेवा। तो इसके बारे में यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं तो हम ये तीन जो टॉपिक है यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम इच्छा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में उनके अंतिम जो दिन थे इस पृथ्वी पर जो उनकी लीलाएं थे वो अंतिम उनके उसके कुछ अंतिम दिन थे तब उन्हें पूछा गया कि प्रभुपाद को कुछ चाहिए। तो प्रभुपाद बोले कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ये प्रभुपाद इससे दिखाना चाहते हैं कि जब हम भगवत धाम लौटने का समय आता है तब हमें कुछ भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो कुछ प्रवचन में प्रभुपाद ये भी बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति इच्छा रखता है कि एक गुलाब जामुन खाने की अगर इच्छा रखता है तो उसे वापस उस गुलाब जामुन खाने के लिए दूसरा जन्म देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जन्मता ही हम गुलाब जामुन खाए और वापस चले जाए, ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि पूरा उसका जो जितना समय है जितने साल है बहुत सारे साल जो है उसे उस एक गुलाब जामुन के लिए यहाँ पर व्यतीत करना पड़ता है। और हमें सभी हम सबको पता है कि कितना कष्ट होता है कितना तकलीफ होता है। और अभी ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता है कि हमारे तो इच्छाएं जो हैं कम हैं इतने हैं उतने हैं। तो ऐसे अगर हम सोचा जाए या फिर हम गिनती किया जाए कि हमारे अंदर कितने इच्छा हैं तो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं हमारे अंदर। और कभी कभी हम बोलते बस एक ही इच्छा है बस, लेकिन जैसे वो इच्छा पूरे होती हैं तो वैसे दूसरी इच्छा निर्माण हो जाती हैं। तो इच्छाएं जो है प्लस 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 हो जाते हैं। जैसे अगर हम कई जगह पर जाते हैं तो जगह पर जाने तक जो है हमारी एक इच्छा रहती है, लेकिन उस जगह पर जाने के बाद आजू बाजू का वातावरण देख के इच्छाएं बढ़ जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में इच्छाएं जो हैं वो इतनी हैं। ऐसा कहा जाता है अगर जितने समुद्र में पानी है उसका अगर इंक बनाएंगे और जो आकाश है उसका पेपर बनाएंगे और जितने पेड़ हैं उनका अगर हम पेन बनाएंगे, तो इस सब का अगर मिश्रण करेंगे हम और लिखते जाएंगे कि मेरी इच्छा 1, 2, 3, 4 ऐसे, फिर भी जो है वो सब कम पड़ जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है तो इच्छाएं जो हैं वो कभी जो हैं खत्म नहीं होती हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक ये इच्छाएं खत्म नहीं होती है। इवन अगर हम बोलते कि मुझे इच्छा रहित बनना है, तो इच्छा रहित बनना भी एक इच्छा है। तो फिर क्या इच्छा रखना चाहिए? तो हमें इच्छा रखना चाहिए कि हमें इस जन्म के अंत तक कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। अगर हम ऐसे इच्छा करते हैं तो हम जो है भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन इच्छा करने के बाद काम खत्म नहीं होता है, उसके लिए हमें बहुत सारे कार्य जो है करना पड़ता है। तो देखिए इस भौतिक जगत में अगर हम कुछ भी चीज़ जो है कुछ भी चीज़ की इच्छा करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, इच्छा है इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, लेकिन उसके लिए जो है कार्य करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वैसे अगर हम इच्छा रखते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की, तो हमें कुछ एंडेवर करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो है तो हमें भगवान को जो है धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो हमारी इच्छाएं जो हैं उटपटांग इच्छाएं वो पूरी करते हैं। तो यहाँ पर नाभि महाराज जो है वे इच्छा रखते हैं कि एक पुत्र प्राप्ति हो।
ओके, इधर मैंने कम कर दिया आवाज़ को, कुछ नहीं करना। ओके,
यहाँ पे बंद है, यहाँ पे मैं पूरा जीरो कर देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। तो नाभि महाराज यहाँ पर एक संतान या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, और पुत्र किसके समान होना चाहिए? वो श्री भगवान के समान, भगवान कृष्ण के समान जो है पुत्र प्राप्त करने की उनकी इच्छा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इच्छाएं आती हैं हमारे हृदय के अंदर, वो माया के प्रभाव से आते हैं, और ये माया का प्रभाव जो है इतना होता है, ऐसा कहा जाता है दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया। तो ये माया जो है ये इसके ऊपर, या हम इसके ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि ये किसके अधीन है? माया अधिष्ठान प्रकृति। तो भगवान बोलते कि ये जो माया है मेरे अधीन है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि माया के प्रभाव से ही भक्त, माया का प्रभाव जो है वो कौन लांग सकता है? भक्त ही लांग सकते हैं। तो फिर हम भी भक्त हैं, लेकिन फिर कौन से भक्त लांग सकते हैं? तो क्योंकि देखिए भक्त, यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्त लांग सकते हैं, तो भक्त की भी डेफिनेशन है, भक्त के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जो लांग नहीं सकते हैं, उसके जीवन में समस्या आते हैं, इच्छाएं आती हैं, बार बार वो माया को, माया के ऊपर जाने में जो फेल हो जाता है, उसका कारण भी क्या है? क्योंकि वो नियोफाइट है। नियोफाइट मतलब वन हु फाइट्स विथ माइंड एंड सेंसेस, जो अपने मन और इंद्रियों के साथ लड़ाई करते रहता है हमेशा। तो उसके कारण जो है वो परेशान हो जाता है, और परेशानी के कारण जो है वो इच्छाएं बढ़ती जाती है। हालांकि एक तरफ चाहता है कि इच्छा नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये माया के प्रभाव से इच्छाएं आती रहती है। दिन रात जो है ये इच्छाएं आती रहती हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। तो ये दिन रात इच्छाएं कैसे आती हैं? तो दिन में जब हम आंखें खोलकर चलते हैं, जो आंखों को दिखता है वो देखने के बाद हमारे अंदर इच्छाएं निर्माण हो जाती हैं। फिर रात को कैसे? तो वही हम स्टोर करके रखते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और रात को कब हम सपने देखते हैं उसके बारे में। तो ऐसे जो इच्छा है दिन रात हमारे मन के अंदर घूमते रहते हैं। एक्चुअली कभी कभी हम इच्छाएं रखते हैं, अच्छा लगता है कि ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, वो इच्छा पूरी होनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती हैं तो कभी कभी हमें लगता है नको नको, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बहुत हो गया, इनफ ऐसा लगता है। तो देखिए अभी 5 महीने से हम लोग अटके हुए हैं, जो भी जो जीवात्मा है भगवान का अंश है, जो करोना है उसके कारण जो है 5 महीने हम एक जगह पर हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारी इच्छाएं थी और इस सिचुएशन के कारण इच्छाएं क्या हो जाती हैं, वो स्टॉप हो जाती हैं, या फिर वो इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ हमें मार्ग नहीं मिलता है। लेकिन अभी अभी होप आ रहा है, आशा दिख रही है कि कुछ ही दिनों बाद पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा और हम अपनी इच्छाएं जो है, जो बची थी 5 महीने पहले जो इच्छाएं हमने की थी, वो इच्छाएं भी हम पूरे करेंगे। इसका मतलब इच्छाएं हमारे पीछे छोड़ रही है क्या? नहीं छोड़ रही है, पहले भी थी, इस बीच में भी है और आगे जाकर भी रहेगी। तो अभी सोल्यूशन क्या है इसका? इच्छाएं तो आते रहेंगे, बार बार सताते रहेंगे हमें, तो इसका सोल्यूशन भी है, वो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन है महत सेवया, महत सेवया, जो छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छकेबा। जब तक हम वैष्णव की सेवा नहीं करते हैं, उनके चरणों की सेवा नहीं करते, तब तक हम माया के चंगुल से बच नहीं पाएंगे, कोई कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं है हमें, जब तक हम साधु संघ साधु की सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन है जो वैष्णव के चरण कमलों की सेवा के बिना माया के चंगुल से बच सकता है? ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं भक्तों की सेवा नहीं करूंगा और माया के चंगुल से बच जाऊंगा। अभी भक्तों की क्यों सेवा करनी है? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के समीप होता है, उस भक्त के हृदय में भगवान जो है निवास करते हैं। तो एक बार एक भक्त पूछते हैं प्रभुपाद को कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज अवर क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम्हारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आई मेड योर क्वालिफिकेशन, मैं तुम्हारा जो है क्वालिफिकेशन बनाया हूँ। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त है उनके कारण ही जो है हम जो भक्ति कर पा रहे हैं सब उनके कारण ही है। हम देखते हैं कि जो मैत्रेय मुनि और विदुर हैं, ये दो साथ में आते हैं और साथ में क्या करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण और जो है और पठन और श्रवण करते हैं। तो जब विदुर ये कथा सुनते हैं तो कथा सुनते सुनते वो भाव विभोर हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि जैसे ही शुद्ध भक्त के मुख के द्वारा हम सुनते हैं तब हमारा हृदय जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कलकत्ता में फर्स्ट कलकत्ता में आए थे, तो श्रील प्रभुपाद अभय, जो अभय नाम था श्रील प्रभुपाद का, तब उनका मित्र जो नरेंद्र है वो बोलता है कि एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए हैं, चलो हम उनके पास जाते हैं। तो उनके पास जाते तो ऑलरेडी अभय बोलता है कि मेरी इच्छा नहीं है, कि मैंने बहुत सारे साधु देखे हैं, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि जो गौरमोहन डे हैं अभय के पिताजी श्रील प्रभुपाद के पिताजी, वो बचपन से ही बहुत सारे वैष्णवों को घर पे बुलाते थे, साधुओं को घर पर बुलाते थे, उनको जो है प्रसाद खिलाते थे और एक ही इच्छा करते थे, एक ही जो है वर मांगते थे कि आप मेरे अभय को आशीर्वाद दो कि वो जो है राधारानी का शुद्ध भक्त बने। तो इनसे हम सीख सकते कैसे जो माता पिता है वो साधु से कैसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो लेकिन ये बचपन से ही अभय ने साधु देखे थे तो उनका विश्वास जो है थोड़ा डगमगित हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर नरेंद्र को वो बोल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। तो लेकिन जबरदस्ती जो नरेंद्र है वो लेके जाता है और जैसे ही वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने पहुंच जाते हैं तो वो दंडवत करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। तो वो दंडवत करने के बाद उठने से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आप लोग जवान हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं तुम लोग पाश्चात्य देश में चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो फैलाते हो। तो ये जब सुनते हैं तो अभय जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, हालांकि एक दूसरे को देखा भी नहीं ठीक से, वो देख जैसे ही देखा कि सरस्वती ठाकुर है उनको दंडवत कर दिया और कुछ बात होने से पहले, इंट्रोडक्शन होने से पहले ही सरस्वती ठाकुर जो है वो उनको ये आज्ञा देते हैं। जैसे वो सुनते हैं तब अभय जो है समझ जाते हैं कि ये जो है सही साधु है, सही व्यक्ति के हाथ में जो है चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। तो लव मात्र साधु संघ जो इसे कैसे जो है हृदय बदल जाता है। तो भक्तों की सेवा जब हम करते हैं तब जो है हमारे हृदय में जो है परिवर्तन आ जाता है। एक बार श्रीमान जयानंद प्रभु जो है वे रथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे, और जब रथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे तब वे जो है जो रथ है उसको बना रहे थे, और देख रहे थे कि आजू बाजू में कोई है क्या, क्योंकि वॉलंटियर्स कम थे। और देखा उन्होंने कि रोड से जो है एक व्यक्ति, एक यंग लड़का जा रहा है, उसे वो बुलाते हैं, बोले थोड़ा इधर आओगे क्या, बोलते हाँ, तो बोले बोली क्या करना है, बोले तुम ये थोड़ा सेवा करो। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, बोले मैं सिखाता हूँ। तो उन्होंने बताया ठीक है, तो मैं अब ये जो है एक खिला पकड़ता हूँ, तुम इसे अंदर डालो। तो फिर वो हथौड़े से उसे मारते हैं और किला जो है अंदर चला जाता है, और जयानंद पुर उनका बहुत गुणगान करते, वहाँ बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा किया। तो अभी वो किले भी उनको दे देते हैं, हथौड़े भी दे देते हैं, बोले आप सेवा कीजिए। तो वही हम देखते हैं कि वो कौन है, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज। तो ऐसे जो हो इसे पता चलता है कि कैसे सेवा से कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है। भक्तों का संग सेवा करना है, लेकिन भक्तों के संग में करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मैत्रेय मुनि और जो विदुर जी हैं उनका संवाद चल रहा है। तो श्रवण मात्र से ही हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जो है निर्माण होती है। तो हमें श्रवण भी कैसा करना चाहिए, श्रद्धा भाव से करना चाहिए, नम्रता से करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए, तभी जो है हमारे अंदर सेवा भाव जो है उत्पन्न हो जाएगा। जब हम सुनते हैं भक्तों के संग में श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से और नम्रता से जब हम सुनते हैं, तभी हमारे अंदर सेवा भावना निर्माण होती है। तो ये सेवा जो है भगवान की और भक्तों की, ये साधारण नहीं होती है, ये सेवा असाधारण है, किसी को भी ये सेवा प्राप्त नहीं होती है। जो हम देखते हैं जो भगवत धाम में सभी भक्त जो हैं सेवा के लिए लालायित होते हैं, क्योंकि वो सभी सेवक हैं, और सेवक मतलब सेवा करना है। क्योंकि अगर हम सेवा अच्छी तरह से करेंगे तो अभी हम जो हमारे अंदर सेवा भाव है तभी हम अच्छी तरह से करेंगे, और वही हम देखते हैं कि भगवत धाम जाने के बाद हमें वही करना है, सेवा ही करना है। अगर वही सेवा भाव जो है हम यहाँ पर उसको कल्टीवेट नहीं करेंगे ठीक से, तो हम इधर ही रह जाएंगे, भगवत धाम जाने को नहीं मिलेगा हमें। तो कभी कभी हम देखते हैं, हम इनिशियली तो बहुत सारा सेवा कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं, अलग अलग भक्त जो हमें सेवा में लगा देते हैं, तब तो हमारा भाव अलग रहता है। तो इनिशियली तो ठीक है, जब तक हमारे मन में कुछ दुष्ट भावना नहीं आती है या गलत भावना नहीं आती है तब तक सेवा ठीक है। लेकिन साथों साथ हमें क्या है, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग में हमें सेवा करना चाहिए, और भक्तों के साथ जो है हमें श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। उससे ही हमारे अंदर जो है क्या होता है, जो सेवा भाव उत्पन्न हो जाता है। और अब ये भक्त की सेवा, तो कैसी भक्त की सेवा से हमें क्या होता है, कथा में रुचि प्राप्त होती है। शिशिशु शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निवेशनात्। तो ये श्रद्धा, जब श्रद्धा से हम जब सुनते हैं वासुदेव कथा रुचि, तब क्या होता है, हम अच्छी तरह से सेवा, जो महत सेवा करते हैं श्रद्धा से, तब हमारे अंदर वासुदेव कथा रुचि, तो ये रुचि निर्माण हो जाती है भगवान वासुदेव की कथा सुनने के लिए। तो जब हम शुद्ध भक्त का सेवा करते हैं, शुद्ध भक्त की, तो कथा में रुचि आ जाती है, भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण हो जाता है। तो कथा सेवन और वैष्णव सेवा दोनों हमें करना चाहिए। तो परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज इसके बारे में कुछ बोलते हैं। कथा मतलब जो सुनते हैं, एक कथा होती है श्रीमद् भागवत से, जो कथा होती है वो है बुक भागवत, और जो बोलने वाला है, जो श्रीमद् भागवत है वो बुक भागवत है, और जो बोलता है उसके ऊपर वो व्यक्ति भागवत होता है। और हमें कथा जो होती है, जो व्यक्ति भागवत बोलता है, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जो है हमें पढ़ना चाहिए। तो उससे जो है भक्त के संग से हमारे अंदर जो है भगवान के प्रति आकर्षण जो है निर्माण होता है। तभी विदुर जी जो है मैत्रेय मुनि को पूछते हैं, बोले फलश्रुति क्या है, हम सुनते हैं सेवा करते हैं तो इससे फलश्रुति क्या मिलती है हमें। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो कार्य के पीछे हम फल की अपेक्षा रखते हैं, अगर फल नहीं प्राप्त होता है तो हम कुछ कार्य नहीं करेंगे। देखिए लोग स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं इतने सालों तक, क्योंकि उनको पता है कि फल मिलने वाला है। क्या फल मिलने वाला है, उस तो अच्छा डिग्री हमें प्राप्त होने वाला है। तो उसके बाद जॉब करते हैं, तो जॉब भी क्यों करते हैं, क्योंकि जॉब एट द एंड ऑफ मंथ तो हमारे हाथ में कुछ सैलरी या पैसा आने वाला है। जब बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस का फल क्या है, कुछ तो लाभ होने वाला है। तो हर एक चीज का जो है फलश्रुति होता है। वैसे ही हम जब कुछ भगवान की कथा सुनते हैं उसका भी फलश्रुति होता है। जैसे प्रजल्प की जो प्रजल्प करते हैं उसका भी फलश्रुति होता है। जब प्रजल्प करते हैं तो भक्ति नष्ट हो जाती है, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भक्त की सेवा करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो उसका भी फलश्रुति होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के फलश्रुति बताई गई है। एक है कि भक्ति जागृत होती है हमारे अंदर, दूसरा है कि शोक मोह और भय ये नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें देखना है कि हम भक्ति में आगे प्रगति कर रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या हमारे हृदय के अंदर भक्ति जागृत हो रही है, भक्ति बढ़ रही है, और दूसरा है कि हमारे अंदर का जो शोक है, मोह है, और जो भय है ये नष्ट हो रहा है क्या। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, कि भक्ति का जो ग्रोथ हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं। तो कृष्ण कथा का ये भेंट है। तो अब ये कृष्ण कथा का भेंट या कृष्ण कथा का श्रवण या भक्तों की सेवा, वैष्णव की सेवा कहाँ प्राप्त होती है हमें? तो ये प्राप्त होती है मंदिर के अंदर। तो प्रभुपाद तो बोले कि मैं तो कई झोपड़े में रहकर अपनी साधना कर सकता हूँ, हमारी भक्ति करके मैं तो भगवद्धाम जा सकता हूँ। तो फिर ये बड़े बड़े मंदिर बांधने का कारण क्या है? कि वो प्रभुपाद बोलते हैं कि सर्वसामान्य जनता जो है वो झोपड़े में नहीं आएगी, तो वो देखकर एक्सटर्नली देखकर ही जो है वहां पर आएंगे। इसलिए बड़े बड़े मंदिर जो हैं वो बांधे हैं, क्योंकि हम जो हमारे जैसे मेरे जैसे जो बद्ध जीवात्मा है वो आकर्षित हो और उस मंदिर में आए। जब मंदिर में आते हैं जैसे राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन लेते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नित्यानंद शिल प्रभुपाद का दर्शन लेते हैं, तो उसके बाद हम कथा सुनते हैं, उनका गुणगान हमें सुनाई देता है, हम सुनते हैं, उसके बाद प्रसाद सेवन करते हैं और भक्तों का संग करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों के लिए भगवान का दर्शन, भगवान की कथा, भगवान की प्रसाद और भक्त भगवान के भक्तों का संग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके द्वारा ही हम भगवद्धाम जा सकते हैं। अगर हम भगवद्धाम जाएंगे तो क्या है, वहाँ पर हम भगवान का दर्शन लेंगे, भगवान की सेवा जो है वो करेंगे, भगवान के बारे में उनका गुणगान सुनेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वापरी करना है, तो मंदिर में ये सब चीज़ें जो है हमें प्राप्त होता है। और ये सब चीज़ें जो है हम प्राप्त कर कर क्या हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। तो ये जो है भक्ति राम स्वामी महाराज बोलते हैं कि हमें मंदिर के प्रति जो है कृतज्ञ, ग्रेटफुल होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर एक जगह पर ये सब सेवा, ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हो। तो मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो हमारे भक्ति के लिए बहुत ही फेवरेबल है। तो हमें आभारी, धन्यवाद देना चाहिए मंदिर का, जो मंदिर या फिर भक्तों के हित के लिए जो कार्य करते हैं उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद हम कैसे करना चाहिए? तो धन्यवाद हमें जो है जो वो कार्य कर रहे हैं उसको बढ़ाकर हमें धन्यवाद देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोले कि अगर हम प्रचार करते हैं तो उनका जो कंधे के ऊपर का लोड है वो कम हो जाएगा। तो वैसे ही प्रभुपाद की इच्छा है कि पूरे वर्ल्ड में जो है ये इसका प्रचार हो, चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार हो। तो ये मंदिर जो है अगर उनसे हमें धन्यवाद कहना है, भक्तों से धन्यवाद कहना है, गुरु से धन्यवाद कहना है, इसलिए प्रभुपाद से धन्यवाद कहना है, तो हमें उनका मिशन जो है आगे बढ़ाने में प्रयास करना चाहिए, हेल्प करना, उनके उन्हें असिस्ट करना चाहिए हमें। अगर हम ये नहीं करते हैं, अगर हम आभारी नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, निंदा करेंगे। और निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि हम मंदिर के प्रति हमारी कुछ सद्भावना नहीं है, या फिर मंदिर का जो मूल्य है वो हमें पता नहीं है, या फिर उस मूल्य को हम जीरो बोलते हैं। और जो कृष्ण भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनका भी मूल्य हमें अभी तक समझ में नहीं आया है। इसके कारण जो है हम जो प्रचार करना चाहिए, फिर जो असिस्ट करना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। तो उसका कारण ये है। तो इससे हमें बचना चाहिए। अगर हम कृष्ण कथा नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है, कृष्ण की विस्मृति दिलाते हैं। अगर प्रजल्प करते मतलब क्या है, हम कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं, कृष्ण का विस्मृति हम उन्हें दिला रहे हैं, और इससे हम खुद का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। शनम अपि वसुदेयम् न चिंतयत् सहानि महाचिद्रम सम्मोहम् सविभ्रमः। शनम अपि वसुदेयम् न चिंतयत्, इसका मतलब क्या है, अगर हम क्षण भर भी वासुदेव का चिंतन नहीं करते हैं तो सहानि, तो बहुत बड़ा हानि हो सकता है, महाचिद्रम बहुत बड़ा दोष हमारे अंदर आ सकता है, सम्मोहम तो हम मोहित हो सकते हैं माया के प्रभाव से, और विभ्रमः तो हम जो है भ्रम में गिर सकते हैं। तो अभी सोचिए, अभी अगर हमें चिंतन करना है, और ऐसे कैसा चिंतन करना है, क्षणम हर एक क्षण हमें चिंतन, सततम कीर्तयन्तु माम, तो सतत हमें जो है भगवान का चिंतन करना चाहिए। लेकिन अभी ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बड़ा दोष हमारे अंदर आ जाएगा और दोष के साथ साथ हम मोहित हो जाएंगे इस भौतिक जगत के, जो रंगी बेरंगी चीजें देखकर हम मोहित हो जाएंगे और उसके भ्रम में हम फंस जाएंगे। तो अभी ठीक है, अभी तो फंस जाएंगे ठीक है, लेकिन इसके सोल्यूशन क्या है, इसके बाहर कैसे आ सकते हैं हम लोग, तो करेक्ट। तो इसके लिए भी यहाँ पर रूपाध्या सॉल्यूशन देते हैं इस तात्पर्य में, क्या बोलते हैं, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना है, साधु संग, हमें साधु संग करना है कि उस लव मात्र साधु संग से हमारा उद्धार हो सकता है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि साधु संघ से क्या नहीं हो सकता है, तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, रत्नाकर डाकू, जो डाकू रत्नाकर था, तो वो जो है बहुत क्रूर था, वो क्या करता था, जो भी दिखाई देता था उसे मार देता था, और मारने के बाद जो है वो काउंटिंग करता था, जैसे हम 16 माला करते हैं उसके बाद हमारा काउंटर भीड़ होता है तो माला ना एक माला हो गया तो काउंट करते हैं, वैसे ये रत्नाकर डाकू जो है क्या करता था, एक को मार दिया, मर्डर किया, उसके बाद वो एक मटके में एक खड़ा डालता था। तो ऐसे उसने 7 मटके भर के रखे थे। सोचिए उस समय उसके पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, अगर उसके पास अगर आज जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, AK-47 है, बॉम्ब है, हैंड ग्रेनेड है, अगर ऐसा होता तो कितने मारता था, कितने मटके को भर के रखता था। तो सोचिए ऐसे व्यक्ति को जब साधु संग प्राप्त होता है तब क्या होता है, तो नारद मुनि जैसे जो महान संत जो है उनके पास आते हैं और उनका संग देते हैं, उस रत्नाकर को पूछते हैं, हे रत्नाकर तू इतना पाप कर रहा है तो इसका पाप का भागीदार तू बनेगा। बोले मैं क्यों बनूं, मैं खुद के लिए थोड़ी ना कर रहा हूं, रत्नाकर आपको बोलता, फिर किसके लिए कर रहा है, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, तो घर पे जाकर पूछ, क्या वो सब फैमिली मैन जो तुम्हारे परिवार है वो सब जो है तुम्हारी इस पापी का भागीदारी बनेंगे क्या। तो बोलते ठीक है आप रुको, मैं तुरंत पूछ के आता हूँ, मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ, उनको तो भाग लेना ही पड़ेगा, भागीदारी लेनी ही पड़ेगी, पार्टनरशिप है मेरे, वो मेरे साथ पार्टनर है। जब घर पे जाता है पूछता है अपने पत्नी को बच्चों को सबको पूछता है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, क्या आप मेरे पाप के भागीदार बनोगे। तो सब बोलते हम क्यों बने, है ना, हमने थोड़ी बोला है कि आप पाप करो। तो जब ऐसा सुनते हैं तो तुरंत दौड़ते दौड़ते जो है रत्नाकर आ जाता है, बोलते हैं नारद मुनि जो है कोई भी रेडी नहीं है। तो तब नारद मुनि बोलते हैं तभी यहाँ से छोड़ दो। हम देखते जब इस नारद मुनि महान संत का जब उन्हें संग मिलता है तब क्या बन जाते हो, वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो ये लो मात्र साधु संग, तो थोड़ा सा संग जब महान भक्त का मिल जाता है तो व्यक्ति चेंज हो जाता है। तो कुछ अभी लॉकडाउन के कारण जो है बहुत सारे जो है बिछड़े हुए मित्र मिल गए हैं, कोई बिछड़ गए हैं कोई मिल भी गए हैं, ऐसा भी दोनों हुआ है, क्योंकि अटक गए हैं अभी 5-5-6-6 महीने से उधर ही अटक गए हैं। हम भी देखते हैं हमारे भक्त जो है मंदिर से बाहर गए थे प्रचार के लिए, उधर ही अटक गए हैं, उधर ही प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ वो जुड़ भी गए हैं, ऐसा होने के कारण जैसे हमारे मित्र 21 साल के बाद मिल गए, जब हमारे स्कूल के थे, जब सब हमारा जूम गेट टुगेदर हुआ, तब जब उन्होंने हम एक दूसरे के सामने आए तो उसमें से एक ने बोला काय होतास तू आणि काय झालास तू, मतलब तो क्या था और क्या हो गया। तो मैंने बोला ये सब जो है भक्त के संग का परिणाम है। तो मैं श्रीमान कृष्णलोकपो का धन्यवाद देता हूँ कि उनके संग से जो है मैं आज यहाँ पर हूँ। तो ये जो है संग के कारण व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। जब साधु का संग होता है, जब साधु का समागम होता है तो हमें क्या मिलता है, तो ये गर्ग संहिता में एक श्लोक आता है, गंगा पापम शशि तापम, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु हरत, पापम तापम तथा दैन्यम, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमम। तो इसका अर्थ यह है कि गंगा जो है हमारे पाप धोती है, शशि जो चंद्र है हमारा ताप मिटा देता है, जो कल्पतरु है हमारा दैन्य वो हर लेता है या मिटा देता है, लेकिन जो साधु है वो हमारा पाप ताप और दैन्य तीनों मिटा देता है। तो ऐसे जब साधु का संग होता है तो पाप ताप और दैन्य ये तीनों जो है वो हर लेता है। तो इसलिए हमें जो है साधु का संग नहीं छोड़ना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, जब भी मौका मिलता है साधु का संग हमें करना चाहिए। साधु का संग क्यों करना चाहिए, इसके लिए श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, भगवत विद्या भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वात स्तेन गदावृत। तो ये जब हम महान भक्त का संग करते हैं तो क्या करते हैं, मतलब धाम, हम महान भक्त का संग मतलब धाम में आ जाते हैं। क्यों धाम में आ जाते हैं, क्योंकि जो महान भक्त है उनके हृदय में भगवान को वो ले चलते हैं, तो जहाँ कहाँ भी वो महान भक्त जाते हैं उस जगह को वो धाम बना देते हैं। और धाम में हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि धाम में क्या क्या होता है, तो जब हम शुद्ध भक्त का जो है संग करते हैं तो हमें धाम का जो है सहवास प्राप्त हो जाता है। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं कि जो इस महान भक्तों के हृदय में जो है कृष्ण है, और इनके आशीर्वाद से ही, इनके वचन से ही वो प्रकट होते हैं। तो ऐसे साधु के संग की आशा हमें रखनी चाहिए, और ऐसे आतुरता हमें रखनी चाहिए कि हमें साधु का संग प्राप्त हो। तो ऐसे आतुरता से ही हमारे हृदय के अंदर जो है रिसेप्टिव हो जाता है हमारा हृदय, और हम भगवान की जो भक्ति है वो एक्सेप्ट करने में हम तैयार हो जाते हैं। तो महत सेवा द्वारम महर विमुक्त तमो द्वारम एसितम संगी संगम। तो जब हम साधु संग करते हैं तो भक्ति के द्वार ओपन हो जाते हैं, और अगर भौतिक संग करते हैं तो हमारे लिए नरक के द्वार ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें महान भक्तों को देखते ही, वो बोलते जब महान भक्तों को देखते हैं तब हमें लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद को बहुत लोगों ने देखा, और देखने मात्र से जो है बहुत लोगों का जो भौतिक जीवन है नष्ट हो गया, और वो भक्ति में आगे बढ़ गए। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे जो हम देखते ग्राउंड देखते हैं, जैसे समर सीजन में जो है धरती होती है, धरती ऊपर से लेन दिखती है, बंजर दिखती है, लेकिन जैसे पानी गिरता है बारिश में तो उस धरती से जो है घास आने लगती है। इसका मतलब क्या है, उस धरती के नीचे जो है घास का सीड है, बीज है। तो वैसे ही हमारे हृदय के अंदर ये बीज है, भक्ति का बीज है। जब हम भक्तों का दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तब वो जो बीज को पानी डाला जाता है, और वो जो है वहां पर भक्ति जो है फुल्लित हो जाती है। तो ऐसा जो है भक्त के संग का ये परिणाम है। तो ये जो है जय तीर्थ नामक हमारे एक आचार्य हैं, तो ये जय तीर्थ जो है वो एक समय, तो जब वो राजकुमार थे तो वो कैसे थे, वो हमेशा घोड़े पर ही रहते थे, खाते थे, पानी पीते थे, घोड़े पर ही पीते थे, वो पानी घोड़े पर बैठे बैठे पीते थे। तो एक बार ये जय तीर्थ जो है जब राजकुमार थे तो वो एक नदी के पास गए, और घोड़े पर बैठकर, घोड़े को नीचे बिठा कर जो वो पानी पी रहे। तो ये जब अक्षभ्य तीर्थ ने देखा तो बोले, क्या तू बैल है, बैल की तरह पानी पी रहा है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि क्या तू बैल है, बैल की तरह पानी पी रहा है, तब उस जो जय तीर्थ है जब राजकुमार थे, तब उन्हें उनका पिछला जन्म जो है वो याद आया। तो क्या याद आया उन्हें, कि जो मध्वाचार्य थे, मध्वाचार्य के एक उनके पास बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी का एक बैल था कौन, ये जय तीर्थ। और तब जो मध्वाचार्य के जो उनके शिष्य थे वो बोलते थे कि हमें भाष्य लिखना है, टीका लिखनी है। तो फिर ऐसा बहुत बार बोलते थे उनके शिष्य, लेकिन मध्वाचार्य एक बार बोले कि तुम लोग नहीं लिखोगे, ये बैल लिखेगा आगे जाकर। तो यहाँ पर जय तीर्थ को याद आया कि जो है मध्वाचार्य ने बोला था कि मैं जो है टीका लिखूंगा। तो हम देखते कि जो जय तीर्थ है वो हमारे परंपरा में जो एक आचार्य है। तो वैसे एक लोग मात्र साधु संघ से कैसे जो भक्ति है जो ना अंकुरित नहीं थी वो अंकुरित हो जाती है। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण है कि हम साधु संघ करें। हम देखते हैं जो हनुमान है, जो हनुमान जी हैं, उनके संग से कैसे लंकनी जो है वो पूरा बदल जाती है। जब हनुमान जी जो है लंका के पास जाते हैं तब लंकनी उन्हें जो है वो रोकती है, जब लेकिन हनुमान जी जो है उनका उनका जो कर कमल है उसके चेहरे के ऊपर लगा देते हैं तो उससे उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तो ऐसे थोड़ा साधु संग से, लो मात्र साधु संग से व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है। हम ये देखते हैं रामानुजाचार्य जो है उनका जो संग प्राप्त हुआ धनुर्धर को, हालांकि धनुर्धर जो है पूरी तरह से भौतिक इच्छा से पूरी तरह से डूबा हुआ था। और ये जो है यहाँ पर एक तरफ जो है श्री रंगनाथ का जो है प्रोसेशन चल रहा था और दूसरी तरफ यहाँ पर धनुर्धर का भी प्रोसेशन चल रहा था, जो उसके साथ स्त्री थी वो उसको देखते देखते जो है वो चल रहा था, वो आगे देख रहा है पीछे चल रहा है। जैसे हम रथ यात्रा में जब भगवान का प्रोसेशन होता है तो हम भगवान की तरफ देखते और पीछे पीछे चलते हैं, सेम धनुर्धर भी वैसा कर रहा था। जब ये रामानुजाचार्य ने देखा तो बोले यहाँ पर भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं और किसी और का दर्शन ले रहा है। एक शिष्य को बोला जाओ उसको बुलाओ, जब बुलाते हैं और बोलते देखो भगवान जो इतने सुंदर सबसे सुंदर है उनका दर्शन छोड़कर तुम किसी और का दर्शन ले रहे हो। तो धनुर्धर बोलता है कि मुझे जो है उस स्त्री की जो आंखें हैं उससे भी अगर सुंदर आंखें आप दिखाते हो तो मैं वो देखूंगा। बोले ठीक है शाम को संध्या आरती के समय आ जाओ। तो फिर धनुर्धर जो है शाम को आते हैं तो रामानुजाचार्य जो है वे उन्हें श्री रंगनाथ के जो है लोटस नयन जो लोटस आईज है वो दिखाते हैं और वो देखते ही धनुर्धर के हृदय के अंदर का पूरा काम चला जाता है और पूरा वो आकर्षित भगवान के प्रति हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स है इवन वी और, लेकिन यहाँ पर समय हो जाता है। तो ऐसे हम आज चर्चा किए कि कैसे भौतिक इच्छाएं जो है हमें इस भौतिक जगह में बांध देती हैं, लेकिन अगर इससे निकलना है तो महत सेवाया साधु संघ ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संघ के द्वारा महत सेवा के द्वारा हम इस भौतिक जगत की इच्छाओं को नष्ट कर सकते हैं और भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा और भगवान के भक्त की सेवा कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। गौर प्रेमानंद।